स्क्रिप्ट है आज के सत्संग में। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच श्री भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी, श्री केशव जी गौड़िया मठ मथुरा और श्री रूप सनातन गौड़िया मठ वृंदावन से हैं। हम आप में से कुछ एक दो तो अब महाराज को जानने लग गए हैं। हम बाकी महाराज के जैसे मैंने कल भी कह रहा था कि परिचय देना गागर में सागर भरने के समान होगा। महाराज चैतन्य महाप्रभु से जो गौड़िया परंपरा आ रही है उसके अंदर आचार्य हैं। आज से कुछ 80-90 वर्ष पूर्व सरस्वती ठाकुर ने गौड़िया मठ की स्थापना की थी चैतन्य महाप्रभु के संदेश को संपूर्ण जगत में फैलाने के लिए। इसी गौड़िया मठ में से बाद में जब ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद यहाँ पे आए तो उन्होंने इस कॉन की स्थापना की। तो उसके जो ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन थे गौड़िया मठ, उसमें महाराज जी के गुरु जी थे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, तो जिन्होंने प्रभुपाद जी को भी संन्यास दीक्षा दी थी। तो महाराज जी बहुत छोटी उम्र में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और तब से वे मथुरा के श्री केशव जी गौड़िया मठ का संचालक किया वृंदावन में और संपूर्ण भारत में जितने महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। महाराज जी को गौड़िया वैष्णविज्म में अथॉरिटी माना जाता है, यानी कि किसी भी सिद्धांत के तत्व के बारे में उनको अथॉरिटी कंसिडर किया जाता है। उन्हें 50 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और वृंदावन मथुरा के अधिकांश लोग महाराज जी से दीक्षित हैं। तो उसी से आप सोच सकते हैं कि जहाँ पे जन्म लेना ही इतना उत्तम कोटि माना जाता है वहाँ के अधिकतर लोग महाराज जी से दीक्षित हैं और संपूर्ण भारत में भी देश विदेश में महाराज पहली बार वेस्ट में आए हैं बहुत लोगों के अनुग्रह करने पे और हम लोगों पे दया करने हेतु। और पहले हॉलैंड गए फिर इंग्लैंड गए और वहां पे कई लोग इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने सोचा कि हम महाराज के साथ साथ ही अमेरिका भी आएंगे। इसलिए आप देख रहे हैं कि कितने लोग उनके पीछे पीछे यहाँ तक पहुंच गए हैं। जो मुझे हमेशा इस बात का ध्यान आता है कि जब कृष्ण अपनी वेणु बजाते थे तो उनके पीछे पीछे ब्रज के लोग भागने लगते थे। तो महाराज भागवत पे आज और कल बोलेंगे और बुधवार से शनिवार तक फ्रॉम वेनसडे टू सैटरडे गांधी सेंटर पे भागवत कथा हाउस हो जहाँ पे महाराज काफी विस्तार में भागवत के ऊपर बोलेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग भी आइए और अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को मित्रों को भी लेकर के आइए। हरे कृष्ण।
हरे अभ्यानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरक्षिषे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुकान्ते प्रणमामि हरि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत् तानो विरह कातरया जुहाम पुत्रे इति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मैं वृंदावन में, भारत में वृंदावन में रहता हूँ। मथुरा और वृंदावन लगा हुआ है, दोनों के बीच में एक माइल भी नहीं, केवल दो अंगुल का अंतर है। वहां में रहने वाला व्यक्ति कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहता, केवल दुर्भाग्य होते हैं वही वृंदावन मथुरा को छोड़ करके दूसरी जगह में आते हैं। लोग तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं, जब वृंदावन में मैं धूली बन जाता, मैं पुष्प बन जाता, तृण गुण बन जाता, वहां की धूली हमारे सिर के ऊपर में लग जाती तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता। ब्रह्मा शंकर तक भी ध्यान करते हैं और इसकी इच्छा करते हैं, किंतु हम, मैं वहां से वृंदावन से इधर आया। वृंदावन से ऊपर से तो मालूम हो रहा है जी आ रहा, किंतु मैंने देखा वृंदावन का सौरभ सुगंध सब देशों में आना चाहिए। विशेष करके हमारे भारतीय हैं जो राधा कृष्ण श्री रामचंद्र सीता इत्यादि को मानते हैं। विशेष रूप से मैं देखता हूं उन लोगों की भी हमें सहायता करनी चाहिए। हम अपनी संस्कृति को ना छोड़ दें, भारतीय संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को ना छोड़ दें, नहीं तो हमारी संस्कृति यदि छोड़ दिया तो सुख और शांति नहीं मिल सकती है। हमारी संस्कृति ने विश्व को जगाया है, इसलिए हमें कुछ बाध्य होकर के सोचना पड़ता है कि हमको भी कहीं जाना चाहिए जहां हमारे भारतीय लोग हैं। दूसरे लोग भी हैं जो भारतीय नहीं हैं, वो लोग भी भगवान के सब सेवक हैं, भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, चुपचाप रहो, डोंट डिस्टर्ब, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा और विश्व का सृजन सृष्टि संहार करने वाले प्रभु के प्रति हमारा आदर भाव नहीं रहेगा, उनकी भक्ति नहीं करेंगे, हम सुखी और शांति नहीं रह सकते हैं। सोने का लंका था रावण का, आप लोग जानते होंगे, किंतु राम का विरोध किया, देखो क्या उसकी गति हो गई। रुपए पैसे में शांति नहीं है, शांति कुछ और चीज है, रुपए से खरीदी नहीं जा सकती, नहीं तो अमेरिका सब खरीद लेता, भारतवासियों के पल्ले, गरीबों के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। इसलिए ये शांति एक दूसरी चीज है। ये कैसे मिलेगी शांति, जिसने विश्व ब्रह्मांड का सृजन किया है, यदि हम लोग उसके शरणागत हों और उसे कृपा की भिक्षा मांगे तो वो कहीं दूर नहीं है, बस हम लोगों के साथ में है, सबके पास। ऐसी कोई विश्व में जगह नहीं है जहां पर वो नहीं है। हम अपने किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, पति को बुलाते हैं, पुत्र को बुलाते हैं, और यहां से जरा दूर है, टेलीफोन नहीं सुन सकता और बहुत दूर है, इधर उधर है, छत के ऊपर में हम बुलाएंगे तो नहीं सुनेगा, नहीं आएगा। किंतु कृष्ण के लिए कोई चीज मन में ये करो, हे प्रभु, शब्द निकल नहीं भी निकले तभी भीतर से वो समझ जाएगा। वैसी कोई जगह नहीं जहां पर है नहीं वो। कंस, जरासंध, रावण, हिरण्यकश्यपु, इन लोगों ने सोचा जब मैं राजा हूं, सम्राट हूं, कंट्रोलर हूं विश्व का, उन्होंने सोचा जहां ब्रह्म नाम का कोई चीज है, किंतु कृष्ण ब्रह्म नहीं है, वो परब्रह्म नहीं है, कृष्ण इज नॉट परब्रह्म। दैव सो नो दैट Brahma is anything who is shapeless, attributeless, colorless, they used to think. और कृष्ण तो छोटा सा बच्चा है अभी, ये ब्रह्म नहीं हो सकता है. जो विश्व का सृजन करने वाला है वो दूसरा कोई ब्रह्म है, वो निराकार है, निरंजन है, रूप नहीं उसका है, उसको हम लोग देख नहीं सकते. इसलिए कृष्ण सामने हैं, उनको नहीं समझ सके जो यही परब्रह्म है. उन्होंने सोचा ये साधारण एक लड़का है, एक गौवा चराने वाला चरवाहा है, ये गोपालक है. उन्होंने उसको कृष्ण को नहीं समझ सके. इसी तरह से लोगों की ये आइडिया है साधारण रूप में, जो ब्रह्म निराकार है, निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है, वो आंखों से नहीं दिखता. जो आंखों से नहीं दिखता उसका रूप ही नहीं है, शेप नहीं है, कॉलर नहीं है. इसके विषय में हम कुछ बतलाने की चेष्टा करते हैं. आज एक बंगाली फैमिली हमसे कलकत्ते के मिले थे, हम लोग टहलने जा रहे थे तो मिल गए. उन्होंने प्रश्न किया हमसे, जो विश्व का सृजन करने वाले जो भगवात्मा परमात्मा या ईश्वर हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, उनका कोई रूप है कि नहीं है? क्योंकि ईसाई लोग, क्रिश्चियंस लोग भगवान का रूप नहीं मानते, बौद्ध लोग नहीं मानते, मुसलमान लोग नहीं मानते. हमारी जो मूर्ति की पूजा होती है उसको कहते हैं ये भूत पूजा, भूत पूजा है, आइडोलेट्री ये है, संकीर्ण विचारधारा के हैं. हम कृष्ण की पूजा करते हैं, रामचंद्र जी की पूजा करते हैं, शंकर जी की पूजा करते हैं, ये सब बेकार की है. क्योंकि भगवान का रूप ही नहीं है. आज थोड़ी सी उसके विषय में विचार करते हुए श्रीमद् भागवत से हम और श्रीमद् गीता से हम कुछ प्रवचन करने की चेष्टा करेंगे. मैं समझता हूं कि अधिकांश लोगों की यह धारणा ऐसे ही है, भगवान का कोई रूप नहीं है. इसलिए पहले भूमिका में मैं थोड़ा सा ये बतलाना चाहता हूं कि असल में क्या बात है. आप लोग भी विचार करके तब स्थिर कर सकेंगे स्वयं ही जो क्या इसमें सत्य है. यह निर्विवाद रूप से सत्य है, इसमें कोई भी दूसरा विचार नहीं है, मत नहीं है. जितने विश्व के इस विषय पर विचार करने वाले लोग हैं, जो दार्शनिक और फिलोसफर्स हैं, जो कुछ न कुछ रूप में धर्म में विश्वास रखते हैं, वो चाहे कोई भी हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियंस हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सनातनी हो, ये सभी मानते हैं कि ये सब जो सृष्टि हुई है ये भगवान से सृष्टि हुई है, गॉड से सृष्टि हुई है. अब ये गॉड मैंने क्या, कोई शब्द ऐसे नहीं बनता है. जीओडी है ना, जी मैंने जनरेटर, जनरेटर मैंने क्या, सृष्टि करने वाला. और मैंने क्या, ऑपरेटर, पालन पोषण करने वाला. हम कहते हमारी मैया बाप तो हमारा पालन पोषण करते हैं, भगवान कहां पालन पोषण करता है. ठीक बात कहते हो, तुम ऊपर से देखते हो, किंतु तुम मैया के गर्भ में जब हो तो मैया तो रोटी खाती है, दूध कहां से उनको मिल जाता है, उनके स्तनों में दूध कैसे आ जाता है. जिस स्त्री को बेटा नहीं है उसके स्तन में दूध क्यों नहीं, स्तन तो रहता है किंतु दूध कहां से आ गया, नहीं आता है. जिनको बेटा हुआ एक वर्ष के लिए दूध आएगा, फिर दूध बंद हो जाएगा. क्यों, क्यों बंद हो जाता है. और बेटा पेट में है और मैया खा रही है, उसका सारा रस उसको मिल रहा है, वो पुष्ट हो रहा है. मैया ने नहीं पेट में पुत्र को दिया, उसकी बुद्धि किसने दी, उसके अंग प्रत्यंग कैसे बनते हैं, कोई साइंटिस्ट जाकर के उसमें भीतर में बना लेता है या कैसे होता है? एक चींटी का पैर भी साइंटिस्ट नहीं बना सकते, अभी विज्ञान इतना कुछ उन्नत नहीं हुआ है। वो यहां का कुनबा यहां का जोड़ करके एक तीसरी चीज बना लेता है। प्राणों का संचार नहीं कर सकता, एक आदमी मर रहा है, मर गया, उसके आत्मा को ले आकर के उसके अंदर में नहीं दे सकता, इसका नाम है विज्ञान। नारद ऐसा कर सकते थे, शुक्राचार्य जी ऐसा कर सकते हैं। इसलिए यह सत्य है कि जो कुछ इस जगत में है उसका सृजन प्रभु ने किया, गॉड ने किया, भगवान ने किया, ब्रह्म ने किया, अल्लाह खुदा ने किया, यह बात तो ठीक है। किंतु लोग कहते हैं कि यदि भगवान का रूप माना जाएगा तो उसका हम रूप स्वीकार करेंगे तो उसका जन्म और मरण भी होगा। अंडरस्टैंड, इफ यू थिंक दैट कृष्ण और गॉड हैज सेड, देन ही विल हैव टू टेक बर्थ एंड ऑल्सो ही विल हैव टू डाई, एज वी डाई एंड टेक बर्थ। तो ब्रह्म का तो जन्म मरण है नहीं। अच्छा, यदि ये आकार हुआ तो रोग होगा, शोक होगा, मोह होगा, मरना पड़ेगा, इसका दुख भी होगा, सुख भी होगा, दुख भी होगा, तो ये ब्रह्म को ये स्वीकार करना पड़ेगा यदि उनका शेप है तो, उनका आकार है तो। किंतु भगवान को तो कोई दुख नहीं है, सुख नहीं है, जन्म नहीं है, मरण नहीं है, तो फिर उनका रूप नहीं होना चाहिए। नहीं तो रूप होने से उसको मरना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, उसको पढ़ना सीखना पड़ेगा, और फिर अंत में मरते समय में शरीर को छोड़कर के चला जाना पड़ेगा। इसलिए मत मानो रूप। इनकी युक्ति ये है। अब इसका उत्तर हम अपने शास्त्रों से, दूसरे शास्त्रों से भी। पहली बात तो ये कि बाइबल में भी ऐसा लिखा है, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। क्या माने? अपने रूप के अनुसार गॉड ने मनुष्यों को बनाया। यदि उनका कोई रूप ही नहीं तो ये कहां से ऐसे आया? तो बाइबल से निकाल देनी चाहिए वो चीज, नहीं तो बाइबल मानो ना? जब उनका रूप ही नहीं था तो उसके रूप समान कैसे बनाया? ये हमारे मोहम्मडनिज्म में कुरान है, उसमें भी लिखा, इन्ना अल्लाह खलाका मैन सूरत ही, सूरत अपने सूरत के समान, अपने रूप के समान में खुदा तल्ला ने अपने बंदे को, मनुष्य को बनाया। तो ये कैसे लिखा वहां? हमारे यहां शास्त्रों में लिखा, सत एव सम्य इदम अग्र आशीत, वेदों में लिखा सत एव सम्य, हे सम्य। ये कह रहे हैं जागल बंक ऋषि जी, कह रहे हैं हे सम्य, प्रभु का रूप है और उसी के रूप में मनुष्यों को बनाया लिखा है। अब उसको हम युक्ति के द्वारा, हम अब उसको कसौटी पर कस रहे हैं। हमारी हिंदी को आप लोग समझ रहे हैं कुछ लोग? देखिए, एक दार्शनिक भाषा में एक सब कारणवाद है, कॉज एंड एक्शन थ्योरी, देयर इज ए कॉज एंड एक्शन थ्योरी। तात्पर्य यह है, जो चीज कॉज में, कारण में नहीं है, वो कर्म में, एक्शन में नहीं होगा। इफ देयर इज नो पोटेंसी इन कॉज, इन एक्शन इट विल नॉट कम। इन सीड देयर इज पोटेंसी ऑफ अ ट्री, if you give seed in earth and give water, then the same पोटेंसी विल कम आउट, अदरवाइज नॉट कम. यदि आम का पेड़ है तो उसे बबूल का पेड़ नहीं होगा, है ना, नहीं होगा. जिस चीज में बीज है, बीज में कारण में जो चीज है, पानी और मिट्टी देने से ठीक वैसा ही होगा. गंगा के किनारे नीम का बीज, आम का बीज, कटहल का बीज, कटहल जानते हैं, कटहल का बीज और दूसरे पेड़ों का बीज उसमें दीजिए और एक ही पानी दीजिए, एक ही सूर्य चमक करके उसको तेज दे रहा, हवा भी एक ही मिल रही, सेम एयर, सेम सन, सेम वाटर, सेम एवरीथिंग, सॉयल,
सेम गार्डनर,
सेम गार्डनर ऑल्सो, बट द सीड्स आर ऑफ डिफरेंट सीड्स, मैंगो, नीम ट्री एंड अदर्स. होने पर भी अलग अलग बीज से अलग अलग पेड़ होंगे, अलग अलग फल रहेंगे, कोई मीठा, कोई खट्टा, कोई तीता, कोई कड़ुआ, कोई कुछ, एक समान नहीं होगा. तो बीज में जो है प्रकट होगा तो वैसा ही चीज होगा. यदि भगवान में कोई रूप नहीं है तो इतना रूप कहां से आया? सबका सीड तो भगवान है ना, गॉड इज द सीड ऑफ ऑल यूनिवर्स. यदि भगवान में कोई रूप ही नहीं है तो इतना रूप कहां से आ गया? इसका मतलब जे भगवान में सभी रूप हैं. और सभी रूप किस में है? मनुष्य में ऐसा कोई रूप नहीं है जो नहीं है. कभी ये ऐसे चलता है ना तो वो चौपाये जैसे चलता है, पक्षियों जैसा ऐसा उड़ भी सकता है, नारद इत्यादि उड़ भी रहे हैं. जितना रूप है सब मनुष्यों के अंतर्गत में है. इसलिए कृष्णकार नर रूप है, राम जो नर रूप है, यही सबसे ऑटम, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, ऐसा कृष्ण का भगवान का रूप है. इतना सुंदर रूप है, उसमें सभी रूपों की पोटेंसी उसी के अंदर में है. इसलिए यदि कृष्ण में कोई रूप ही नहीं है तो इतना रूप कहां से आया? फ्रॉम नथिंग, आउट ऑफ नथिंग. कोई भी चीज उससे एनीथिंग कैन नॉट बी मैनिफेस्टेड. यदि नथिंग कोई चीज ही नहीं है तो वहां से ये समथिंग, एनीथिंग, मैनीथिंग, ये कुछ भी नहीं होगा. है नथिंग, फ्रॉम नथिंग कैन नॉट बी दिस वर्ल्ड कैन कम. जब कोई चीज नहीं है, जैसे बौद्धवाद लोग कहते हैं और सब लोग कहते हैं, क्रिश्चियन और सभी लोग कहते हैं, भगवान का कोई रूप नहीं है, ईश्वर का कोई रूप, गॉड का रूप नहीं. किंतु नहीं, ऐसा मत समझो. यदि काज में ही नहीं है, कारण में ही नहीं है, भगवान जो सबका कारण, उसमें रूप नहीं है तो इतना रूप कहां से आया, कैसे आ जाएगा? नहीं. दूसरी बात एक देखो, जैसे रूप शब्द है, गुण शब्द है, आकार शब्द है ना? ये संस्कृत में, हिंदी में, बंगला में, गुजराती में, हमारे इंडियन लैंग्वेज जितने भी हैं, ये संस्कृत की बेटियां हैं. समझ रहे हैं ना? माता कौन है? संस्कृत. तमिल, तेलुगु इत्यादि जितने भी भाषा है, मैं तो ये कहता हूं और ऐसी धारणा है बड़े बड़े विद्वानों की, फ्रेंच, इंग्लिश जितने भी भाषाएं हैं सबकी मूल माता संस्कृत है, उसी से निकले हैं सब. विशेष करके हिंदी, बंगला, गुजराती, उड़िया, इंडियन लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु का बहुत संबंध है संस्कृत से. बहुत सरल है किंतु लोगों ने आज उसको डेड लैंग्वेज बनाया है. विशेष करके भारत पर रूल करने के लिए कुछ लोगों ने ऐसे किया, किंतु संस्कृत में ऐसी चीजें हैं जो कि और किसी भाषा में नहीं है. तो उसमें रूप शब्द है, इसको कहते हैं मौलिक शब्द। अंग्रेजी में इसका कुछ
फंडामेंटल
रूट वर्ड, रूट वर्ड। अब ये रूप जो है गुण है ना, नाम है, ये रूट वर्ड मूल शब्द है, यौगिक शब्द है। इसमें किसी चीज को समझाने के लिए और इसमें लगा दो अलग से तो ये अरूप हुआ, अरूप से रूप नहीं हुआ है, रूप से न अरूप हुआ। आ रहा है समझ में? अरूप कोई शब्द नहीं है, रूप शब्द है। अरूप में किसी चीज को समझाने के लिए, मान लो रूप नहीं है, इस तरह से लाइक ज्योमेट्री, लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल, इफ द टू साइड्स एंड एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल देन टू ट्रायंगल्स आर सर्टेनली बी इक्वल इन एवरी रिस्पेक्ट। इन द सेम टाइम, इन द सेम मैनर, इन द सेम वे, सपोज God has no shape, no qualities, nothing he has. Then how this world can come? From nothing? Why not from nothing? Anything is coming just now. Why? Lakhs and lakhs, thousand years have passed, new thing has not been created. It cannot be created from zero. इसलिए गुण शब्द है उस चीज को समझाने के लिए कहा गया। आगे से उसको हिंदी में या संस्कृत में उसको उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग किसको कहते हैं जरा समझिए। एक आदमी की नाक बह रही है, पानी आ रहा और बीच बीच में छींक रहा है और सिर में थोड़ा सा भार है, थोड़ा थोड़ा सा टेम्परेचर है। अच्छा ये क्या चीज है, कौन सा रोग है?
जुकाम।
जुकाम है ना, फीवर। फीवर नहीं है, ये फीवर किस लिए आया?
जुकाम,
ठंड लग गई। ये सब सिम्टम है। तुम नाक से पानी पहुंचते जाओ, वो नहीं बंद होगा, सिर को दबाओ तो भी वो कम नहीं होगा। बुखार में हवा चलाओ, पंखा और कूलर लगा दो, वो नहीं कम होगा, वो और बढ़ेगा। उसके भीतर में जो बीमारी है उसके लिए दवा दो, तब वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह से उस इसको कहते हैं जो ये दिख रहा है, नाक का बहना, सिर में दर्द इत्यादि, थोड़ा सा ये उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग दूर हो जाएगा, रियल चीज आ जाएगी ना? तो अरूप जो है उसमें अ जो है क्या है, उपसर्ग, इसको हटा दो, बाकी क्या रहता है? ये रूप चीज है। इसी तरह से गुण है, निर्गुण, कोई गुण नहीं। इट मीन्स दैट देर इज नो गुण नॉट, बट इन दिस वेरी वर्ल्ड गुण इज देयर, गुण उसमें है। अच्छा गुण को हटा दो, बाकी क्या रह जाएगा? जीरो। इसलिए मौलिक जो रूप है, गुण है, उसकी क्रियाएं हैं, ये ब्रह्म में है। रूप भी है, गुण भी है, नाम भी है, सब कुछ है। इसलिए यदि उसी में गुण नहीं है तो ये गुण आया कहां से? तो वो लोग कोई प्रश्न करेंगे कि आपके शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, दे कैन आस्क दैट इन वेदास, समवेयर इट इज रिटन अपाणिपादो जमना गृहिता, नो नेम, God has no name. He has no shape. He has no attributes. He has no power. He has nothing. It has written? Yes, it is written. हाँ वो लिखा है, किस लिए? किस लिए लिखा? बुद्धि वहां तक नहीं जा सकती, ये हम समझ सकेंगे। उसके यहां जाकर के अनकंडीशनली सरेंडर करो तब तो वो समझा देगा जहां का क्या चीज है। अपनी बुद्धि से उसे नहीं समझा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देकर के समझो, पानी है, देयर इज वाटर। पानी हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं ना। पानी कैसा है, उसका आकार कैसा है पानी का? यदि हम देख रहे हैं तो उसका हम देख रहे हैं ना। बट साइंटिस्ट विल टेल दैट वाटर हैज नो शेप। भाई कहेंगे ये शेप नहीं, हम तो देख रहे हैं भाई उसको, पानी को। कहें जैसे इसलिए कि उसको लोटे में रखो, लोटा समझते हैं, जिस ग्लास में रखो तो वो ग्लास हो जाएगा, थाल में रखो तो थाल जैसा हो जाएगा, सुराही में रखो तो सुराही जैसा हो जाएगा, जिस बर्तन में रखो वैसा ही वो शेप धारण कर लेगा। सो वी कैन नॉट डिफाइन। सो वो ब्रह्म जो कृष्ण है वो सभी रूप धारण कर सकता है, उसे कौन से रूप का तुम वर्णन कर सकता है? इसलिए लोगों ने कहा जैसे ही हैज नो शेप एट ऑल, बिकॉज वी कैन नॉट डिफाइन। बट वी सी दैट देयर इज शेप ऑफ वाटर, एंड इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ वाटर देन हाउ यू कैन हैव ऑफ कृष्ण? ही हैज मोर शेप्स देन वाटर। सो हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसीलिए शास्त्र में कहा कि भाई उसका रूप भाई कौन सा बतलाएं हम, वो तो सभी रूप धारण कर सकता है। कृष्ण ही शुकर का रूप धारण किया ना, मत्स्य का रूप धारण किया, बराह का रूप धारण किया, नृसिंह जी का, राम का, ये सब तो उनके रूप हैं, इसलिए हम डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छा पानी, पानी पीने में कैसा होता है, उसका स्वाद अपना है कि नहीं? पानी पीते हमको तो स्वाद लगता है, किंतु जहां की मिट्टी जैसी है उस मिट्टी में जैसा स्वाद है ऐसा ही हमको स्वाद लगता है। जहां की मिट्टी नमकीन है वहां पानी कैसा होगा? नमकीन। यहां की मिट्टी अच्छी है वहां की मिट्टी में पानी अच्छा टेस्ट होगा। पानी का अपना कोई रंग नहीं है, किंतु जहां की मिट्टी में जैसा रंग है वैसा वो ग्रहण कर लेता है, किंतु फिर भी पानी में अपना टेस्ट है। पानी नहीं रहे तो हम जीवित नहीं रह सकते, इसलिए पानी में ये गुण है, पानी जीवन है। बिना पानी का कोई रह सकता है? नहीं रह सकता। इसलिए पानी में बहुत से गुण हैं। पानी रहेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते। और उसको यदि कोई कहे जैसे पानी का कोई गुण नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे या बुद्धिमान कहेंगे? पानी में अपना टेस्ट भी है, शक्ति भी है, एनर्जी भी है, सभी कुछ है। पानी से बिजली निकलता है, निकलती है ना, और संसार को जीवित रख रही है बिजली। आज यदि बिजली नहीं रहती तो ये बत्ती जलती तो कहते ये पानी में कोई गुण ही नहीं है। इसलिए पानी में इतने गुण है कि किसी गुणों का वर्णन तू करेगा। इसलिए यदि पानी के ही शेप को, पानी का नाम भी तो पानी है ना, इसमें नाम भी है। कोई भी वस्तु रहेगी संसार में उसमें नाम रूप गुण और क्रिया जरूर रहेगी, नहीं तो कोई वस्तु नहीं है। जो नथिंग है ये क्या है? कुछ नहीं है। इसका न तो नाम है, न कोई रूप है, न गुण है, न क्रिया है। किंतु कोई वस्तु रहने पर, जैसे एक ये है, इसका नाम भी है, रूप भी, गुण भी है, क्रिया भी है। हवा भी है, उसका नाम है हवा, विंड। उसके कितने नाम हैं? एयर। एयर और विंड एक ही तो है किंतु एक नहीं है। खूब जोर से चलती है तो वो विंड हो जाएगी। जिस हवा के साथ में पानी और वर्षा और बर्फ रहेगा उसका दूसरा नाम है। है एक ही चीज, पानी एक ही चीज है, भेपर भी पानी है ना, भेपर भी पानी ही है तो है, और बर्फ भी पानी है, और पानी भी पानी है, जल है, एक्वा है, वाटर है। किंतु बर्फ को वाटर नहीं कर सकते, बर्फ है उसको पानी नहीं कर सकते, किंतु पानी ही है। इसी तरह से प्रभु के नाम हैं, उनका रूप भी है, उनका गुण है, उनकी क्रियाएं हैं। आज यदि वो नहीं रहते तो ये विश्व का सृजन नहीं होता, ये उनका गुण है। बड़े दयालु हैं, अद्भुत दयालु हैं, सबका पालन पोषण करते हैं। ऐसा विश्व में कोई नहीं है जिसका पालन पोषण नहीं करते, किंतु दिखलाते नहीं जो मैं पालन पोषण करता। हमारे जैसे नहीं है जो एक पैसा का दान करेंगे और कहेंगे जी भाई फोटो ले लो, दान कर रहा। किसी को माला देते हैं तो बुलवा लेते हैं, भाई फोटोग्राफी ले लेना है जो मैं इनको ये दे रहा हूं, फोटो इनका दे रहा हूं। उनको जरूरत नहीं है, वो छिप करके दया करते हैं, सभी पर दया करते हैं। उनके लाखों रूप हैं, एक एक हृदय में वो सब में है। इसलिए भगवान का रूप है भाई, पहली बार बड़े दयालु हैं। इसलिए सभी, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, चाहे बाइबल हो, कुरान हो, चाहे बौद्धों का कोई ग्रंथ हो, जहां पर कि भगवान का रूप का नहीं लिखा है। उनका रूप है, लाखों रूप एक साथ में धारण कर लेते हैं। रास हुआ वृंदावन में, आप लोग जानते हैं ना, एक एक गोपी एक एक कृष्ण, एक एक गोपी एक एक कृष्ण। जरा आप दो रूप होइए तो देखें। कोई कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म होते तो जरा लाख रूप धारण करो। तो मथुरा में एक आदमी आया, मायावादी ब्रह्मवादी, अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं, सर्वम खलोदम ब्रह्म, सभी ब्रह्म हैं। मैंने कहा जी वाह, आज तो मेरा सौभाग्य जी आप घर बैठे ब्रह्म हमारे पास में आ गए, आपके लिए बहुत बहुत नमस्कार है, आप ब्रह्म हैं। बच्चों को मैंने कहा जी बच्चे एक बात लाओ तो मैं थोड़ी सी परीक्षा करूंगा, कृष्ण तो परब्रह्म थे, तो उन्होंने आग खाई थी हमने सुना है, समझ रहे हैं ना। वन से मायावादी केम टू मथुरा इन मठ एंड ही टोल्ड दैट अहम ब्रह्मास्मि यू आर ब्रह्म ऑल्सो ऑल आर ब्रह्म। आई टोल्ड यू माई नमस्कार टू यू, आई एम सो फॉर्चुनेट दैट आई हैव सीन ब्रह्म नाउ, सो बट आई विल टेस्ट। I told him to my all boys, brahmachari, bring a एक लकड़ी ले आओ जलती हुई, लकड़ी जलती है ना, you should bring a firewood who is burning on so high with flame, और इसके मुख में डालो तो give in his mouth and if he is brahm then he will take it, then I will think that hey, he is Brahma. And if he will die, and he will fly away from here, run away from here, then you will see that he is not Brahma.
Die, fly, not
he saw that brahmacharis are bringing.
Then not to cry.
Brahmachari are bringing, actually, a mota, itna mota lakdi, aur jala karke le aaye, maine kaha jaise isko pakdo bhaag na jaye. Un logon ne satmuch mein pakad liya, main dara raha tha usko. मैंने कहा जैसे अब तुम ब्रह्म है कि नहीं है बतलाओ, अब नहीं बोलता है, यदि कहे तो मैं मुख में डाल दूं। कुछ नहीं बोला, इसके बाद में भाग करके चला गया। आज यदि ब्रह्म ही है तो उसका शेप कहां से आया, ब्रह्म लेकर के शेप आया, इसलिए इसका चक्कर में नहीं पड़ना है। इसलिए ब्रह्म का रूप है, वह रूप क्या है, कृष्ण रूप है, राम रूप है, जगत को मुग्ध कर दे। एक बार यदि देख लिया तो फिर संसार में और कोई चीज देखने की इच्छा नहीं रहेगी। कैसा रूप, हमारे यहां एक बिल्व मंगल हो गए हैं, बिल्व मंगल दक्षिण भारत के थे, फ्रॉम साउथ इंडिया, बहुत अच्छे कोटि के भक्त थे। आप लोगों ने सुना है कभी बिल्व मंगल का नाम, नहीं सुना, बहुत भक्त। वो एक वेश्या के प्रति आसक्त थे, he was so much attached to any prostitute was very like a किशोरी लड़की, बहुत ही सुंदरी थी और गला कितना मधुर, बहुत मधुर, समस्त विद्याओं में निपुण थी। बिल्ल मल्ल जी ने उसे देखा, और अपने घर का सारा रुपया पैसा जो कुछ सब उसके चरणों में डाल दिया और उसके बन गए। एक दिन इसके पिताजी का श्राद्ध था बिल्लो मंगल जी के घर में, बिल्लो मंगल हैज कम फ्रॉम ए वेरी रेस्ट्रिक्टेड फैमिली, बहुत बहुत ऊंचे कोटि के फैमिली में उनका जन्म हुआ था, पढ़े लिखे थे, अच्छे घर में शादी हुई, स्त्री भी उनकी बड़ी पतिव्रता और सुंदरी थी, माता पिता भी धनी, किंतु कुसंग में पढ़ करके ऐसा हो गया। तो वो पिताजी का श्राद्ध हो रहा था, ब्राह्मण लोग घर में पा रहे थे, रसोई पा रहे थे प्रसाद, और वो उसमें से निकाल लिया मिठाई, अच्छी अच्छी मिठाइयां, और लेकर के रात में चला उसे मिलने के लिए वेश्या से। वर्षा हो रही है, नदी में पानी भर रहा है, बहुत जोरों से तीव्र प्रवाह उसमें था, देखा जी मैं कैसे पार जाऊं, कोई चीज नहीं, देखा एक कोई लकड़ी जैसी बह करके चीज आई, उसी पर बैठ गया और किसी तरह से उस पर मैं पार कर गया। बहुत ठंड भी थी, वेश्या के पास में गया, उसका घर बंद भीतर से, चारों तरफ से देखा जैसे बहुत ऊंची दीवार है, पीछे गया देखे जी कैसे चढ़ूं, देखा कोई रस्सी जैसी लटक रही है चीज, उसको पकड़ करके ऊपर चढ़ा, जेहू गया शरीर कांप गया और ऊपर से गिर गया, बड़े जोरों से शब्द हुआ, वेश्या की नींद खुल गई, और खुलने के बाद में देखा भाई क्या है, नौकरानी को हुक्म दिया देखो तो जो क्या गिरा, शब्द कैसे हुआ, देखा अरे ये तो बिल्लो मंगल पड़ा हुआ है, उसको पकड़ करके घर में ले करके उसको सेंक दिया, कंबल उंबल चढ़ाया, जब वो ठीक हुआ होश में पूछे तुम कैसे आए, तो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता था, तू हमारी प्राण है, ठीक है तो आया कैसे, अब तो मैं पीछे से कोई चीज रस्सी थी उसको पकड़ कर, चलो दिखाओ तो
रस्सी लटका के रखा,
रस्सी नहीं था, सांप था काला, होश नहीं, सांप को पकड़ करके ऊपर में चढ़ गया, कैसे तू नदी को कैसे पार किया, तो एक लकड़ी थी, चलो तो देखें, लकड़ी नहीं मरा हुआ कोई मुर्दा पड़ा हुआ था, सड़ा हुआ दुर्गंध आ रहा था, कोई उसके निकट नहीं जा सकता था, और उसको होश नहीं, इतना कामी पुरुष उसके ऊपर में कैसे तीर से चलाया, कहे तुमको धिक्कार है, तुम्हारा इतना प्रेम यदि कृष्ण में होता भगवान में होता तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता, तुमको धिक्कार है, धिक्कार धिक्कार समझते हैं ना, तुम हमारे घर से चले जाओ, तुम्हारे जैसे कामी पुरुष की हमको जरूरत नहीं थी। बस उसको चोट लगी तीर, वाणी की जो तीर होती है वो इस तीर से भी गड़ी घाव करती है, इस बाण का तीर का घाव सूख जाएगा किंतु वो कभी नहीं सूखेगा, जीवन भर तड़फाता रहेगा, बीस उसकी लग जाएगी। घर छोड़ करके चल दिया, जाने के बाद में जब रास्ते में जा रहा था उसने प्यास लगी, कुएं पर गया, उसने कहा भाई पानी पिला दो, कोई लड़की थी घर की, कोई नई बहेल बहू थी, उसने पानी पिलाया, उसके तरफ में देखता रह गया, वो पानी लेकर के जब घर गई तो उसके पीछे पीछे ये भी उसके घर गया, उसका स्वामी वहीं पर बैठा था, वो घर के अंदर में चली गई, वहां पर खड़ा रहा, उसका पति ने पूछा भाई किस लिए खड़े हो, तो वो जो लड़की गई ना उसको मैं थोड़ा सा बातचीत करना चाहता, ठीक है महात्मा जी बैठिए, उनको बैठाया और अपनी स्त्री को बुला लाया, स्त्री उसकी आई, उन्होंने उसको प्रणाम किया, बिल्लो मंगल जी ने कहा जो तुम्हारे यहां पर जो दो कांटे हैं, हमारे उस समय के बाल कटते नहीं थे स्त्रियों के, उनका जूड़ा होता था, बहुत ही सुंदर अलबेला जूड़ा, उसमें फूल की मालाएं लगाती थी, अभी भी दक्षिण भारत में उत्तर भारत में स्त्रियां अपने केशों को यहां बांध करके उस पर फूल इत्यादि लगाती है, उसमें उसको जूड़ा बांधने के लिए कांटे होते थे इतने लंबे लंबे, उसको कहा जी जरा हमको दो कांटे दे दो, दिया और बिल मांग ले साथ ही साथ में आंखों में। ये आंखें ही सब रोगों की जड़ हैं। न रहे बांस न बजे बांसुरी, बस आंखों को खोल लिया। इसके बाद में हा कृष्ण करके रोते हुए वृंदावन चला। इतने छोटा सा बालक मिल गया। बालक ने कहा जब बाबा के घर जा रहा, उन्होंने मैं वृंदावन जा रहा, अरे मैं भी वृंदावन जा रहा हूं भाई, तुम देखते हो जरा लठिया हमारी ले लो और हमको भी वृंदावन ले चलो। थोड़ी देर के बाद चलने के बाद में बच्चे ने कहा जी बाबा वृंदावन तो पहुंच गए। अच्छा वृंदावन इतना जल्दी पहुंच गए? हाँ हाँ बाबा। कहां पर पहुंच गए? गिरिराज गोवर्धन में। और वहां पर बिना खाए पिए कृष्ण कृष्ण करता रहा। शाम को एक लड़का छोटा सा सांवला सा पीतंबर पहने आया, बोला बाबा मेरी मैया ने देखा जी तू बिना खाए पिए ब्रज में कोई भूखा नहीं रहता, ये मैया ने दूध भेजा इसको पी लेना। उसने कोई ध्यान नहीं दिया, वो रोता रहा और कृष्ण कृष्ण करता रहा। थोड़ी देर के बाद में जब चला गया तो दूध पिया, इतना मीठा इतना सुगंध इतना अच्छा, अजी हाय हाय कृष्ण ने हमको ठग दिया। वो कृष्ण ही लेकर के आए थे। कहा जी अब मैं दूध नहीं पीता, जब तक आप मुझको दर्शन नहीं देंगे तब तक नहीं लेता। बाध्य होकर के कृष्ण को आना पड़ा, राधिका जी को साथ लेकर के आए। कहे देखो ये अंधे के पास में मत जाना, नहीं पकड़ लेगा, बड़े चतुर होते हैं। राधिका जी ने कहा जी क्या हमको पकड़ेगा अंधा आदमी, कहे देखो और आगे मत जाना। और वो धीरे धीरे हाथ निकाल रहा है बिल्ल मंगल, पकड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं। कृष्ण को दर्शन देने के लिए, राधिका जी दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। निकट में जहीं पहुंची पैर पकड़ लिया, अरे इसने तो सचमुच में पैर पकड़ लिया, वो तो पकड़वाना ही चाहती थी, नहीं तो उनको कौन पकड़ेगा। जब पकड़ लिया, अरे छोड़ो 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 जल्दी, मैं नहीं छोड़ता। कब छोड़ेगा? यदि आप हमारी आंखों का ऐसा कर दीजिए जो मैं आपको देख लूं। ये ठीक है,